ओम शांति। कल की मुरली पसंद आई? मुरली पसंद तो ये नहीं है, फिर भी पूछता हूँ क्या पसंद आया? अब ये बताओ क्या पसंद आया? हैं? क्या पसंद आया? नहीं, इन्हें बोलने ही नहीं दिया आपने। क्या पसंद आया? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठाओ बोलो। चलो सोच लो। हाँ बोलो भाई, भाई बोलो। टाइटल दिया क्या? परमात्म तख्त नसीब, वो पसंद आया। तो आप उसके तख्त पे विराजमान हैं? कौन कौन है सोचना। भाइयों को क्या पसंद आया? बातें गुहे भी हैं और हम सब इनको सुनते भी रहे हैं रोज रोज। बोलो। समय की तीव्रता। पीछे वाले अब बोलो। अब चुप हो गई आप, अब बोलो। पहले आगे वाले बोल रहे थे, बोलो। नहीं, अरे बोलो ना, चुप होगी। देखो बहन जी, जब मैं पूछता हूँ तो डर जाती है, क्या बात है भाई। बोलो। अमृत छा। अच्छा मैं प्रश्न पूछता हूँ। सवेरे बाबा चक्कर लगाते हैं, क्या चेक किया? क्या चेक किया? चारों सब्जेक्ट में कैसे हैं सभी? ये इम्पोर्टेंट बात। अगली बार जब मिलेंगे सब तो बाबा क्या देखना चाहेंगे? हाँ, जो संस्कार या कमजोरी हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो न हो। बस सभी ने ये काम कर लिया होगा, किया या नहीं? नहीं, अच्छा उत्तर है। शुरू ही करना है, शुरू कर दिया ना सभी ने, क्योंकि हमें अपनी उस कमजोरी का ज्ञान होना ही चाहिए जो बाधक है, और हम उस पे काम करना शुरू कर दें तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब बाबा कुछ विशेष कार्य देते हैं तो बहुत मदद मिलती है हमें उसे करने में। इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि हर मुरली में बाबा जो कुछ कहेगा उसे यदि हम सच्चे दिल से करेंगे तो बाबा की बहुत ज्यादा मदद हमारे साथ होगी और वो कार्य हो जाएगा। माया दो तरह से आती है, वो कैसे कैसे? व्यर्थ संकल्प, ये तो पुरानी माया है। नई कौन सी बताई? मैं राइट हूँ। सारे संसार में यही खेल चल रहा है, बाहर भी हर व्यक्ति सोच रहा है मैं राइट हूँ। घर में अगर आपके बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं वो बुरे संग में जा रहे, वो कहते हैं राइट हैं। सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। कोई टीवी सारा दिन देख रहे हैं, वो सोचते हैं हम राइट हैं। कोई नहीं पढ़ रहे, वो भी सोचते हैं हम राइट हैं। जो गुस्सा कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? हम भी राइट हैं, नहीं करेंगे तो ये सब बिगड़ जाएंगे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। हर व्यक्ति अपने को राइट मान रहा है। मिट्टी कौन सी बताई? देह भान और देह अभिमान, क्या अंतर है दोनों में? वो गहरी मिट्टी है देह अभिमान। कितनी गहरी? 10 फुट 20 फुट 5 फुट। गहरी मिट्टी है। देह अभिमान में क्या क्या आता है? सारे मैंपन, सारे अभिमान, जो अनेक समस्याओं को, टकराव को, परिस्थितियों को जन्म देते हैं। और देह भान माना देह, देह देह की फीलिंग में रहना, उसमें अभिमान हो या ना हो, कोई व्यक्ति अभिमान से मुक्त भी हो सकता है पर उसमें देह भान रह जाता है। संसार में बहुत लोग अहंकार से, मैंपन से मुक्त भी देखे जाते हैं बाहर भी, लेकिन देह भान तो रहता ही है। तो हमें इन दोनों मिट्टी से परे चलना है, तब हम दिल तख्त नसीन बन सकेंगे। झूले कौन कौन से दिए, किस किसके पास हैं ये चारों झूले? शांति, सुख, खुशी और प्रेम, और भी झूले हैं, पर ये चार तो बहुत जरूरी झूले हैं, ये हम सबके पास होने चाहिए। तो परमात्म दिल तख्त नसीन, जो मिट्टी में नहीं खेलेंगे, जो झूलों पर झूलेंगे, वो बाबा के दिल तख्त पर रहेंगे। और कौन दिल तख्त पर आता है बाबा के? दिल तख्त माना भगवान के दिल को जीतने वाले। दूसरे शब्दों में, जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता हो, जिन्हें वो चाहता हो। वैसे तो माँ बाप अपने सभी बच्चों को बहुत चाहते हैं, पर फिर भी कौन बच्चे दिल पर रहते हैं? पहला जो आज्ञाकारी हो, दूसरे लौकिक में देखो, सब माताएं देखो, कौन से बच्चे अच्छे लगेंगे? जो पढ़ाई में फेल होते हों या बहुत होशियार हों? बोलो, अब मैं ही पूछ लेता हूँ सीधा। भाई बताएं, कौन से बच्चे अच्छे लगेंगे? जो पढ़ाई में बहुत होशियार हों। बाबा के दिल तक पर भी वो बैठते हैं जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, और जो केवल बाहर मुरली पढ़ लेते हैं, क्लास में जाके क्या करेंगे? बहन जी भी तो यही मुरली सुनाएगी, यही पढ़ लेते हैं घर में, पांच मिनट में मुरली पढ़ ली, ठक 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 हो गई मुरली, अटेंडेंस लग गई, बाबा को कहेंगे हमने मुरली सुन ली, पढ़ ली। ये नहीं, आज की मुरली ख्याल है सवेरे की? बहुत गुही है, ऐसा लगा पहली बार सुना। अब तक बाबा कहते थे जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब से स्वर्ग, और आज कह दिया जब श्रीकृष्ण का जन्म होगा तब से वैकुंठ शुरू। बड़ी गुई है बात, क्यों? उनके माँ बाप का गायन उनसे कम है? योग बल से सबसे पहले जन्म उनका ही होता है, माँ बाप का नहीं। जो भी देवता हैं, पुरुषार्थ भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ उसी आत्मा ने किया। कहीं मदद करो माताओं को, माता जी का बहुत, माताओं का ये हाल होता है जब हम बत्ती में जाते हैं ना, उनके बच्चों ने उन्हें मोबाइल दिया है, हम फोन करेंगे, उनको बस बटन दबाना आता है, तो वो सोचते अब क्या करें, क्लास में बैठे तो बाहर ले जाएंगे धीरे धीरे, वो चू चू कर माताएं सीख तो गई मोबाइल। आज क्या कहा साइंस किस लिए? कल बाबा ने कहा साइंस, तो देखो बाबा ने साइंस के साधन भी हमें सब दिए सेवाओं के लिए। हमें उसके दिल तक नसीन बनना है, उसके दिल तक पर वो आत्माएं भी रहती हैं जो उसके यज्ञ को सच्चे दिल से संभालती हैं, उसके दिल तक पर वो आत्माएं हैं जो अशरीरी और योगयुक्त हो जाते हैं। उनकी यादगार कौन सी है? ध्यान दे बाबा के कल के सब, उनकी यादगार माला, जिसके हर मणके को भक्त कितने प्यार और भावनाओं से देखते रहते हैं। देखना अलग चीज, देखते रहना, जैसे वो मणके भी उन्हें आकर्षित करते हैं, उन्हें देखते ही रहें, क्योंकि जिनकी यादगार वो मणके हैं, जो वाइब्रेशन सुन में थे वही उनके मणकों में भी रहते हैं, इसलिए उनको देखने की, उन्हें मस्तक पे लगाने की इच्छा होती है। तो कल की मुरली से हम बहुत कुछ सीखेंगे, और अब अगली मुरली जब तक आए 15 तक, तब तक इसको कम से कम 5 बार तो सभी पढ़ेंगे। पसंद है? 5 बार। अच्छा ये रहेगा कि इसमें से 10-12 पॉइंट्स लिख ली जाएं, फिर उन्हें पढ़ा जाए, क्योंकि जो बातें अपने को बहुत प्रिय लगती हैं, वो तभी प्रिय लगती है ना जब सुनते हैं, उसको अंडरलाइन करें। हमने बाबा की मुरली से क्या सीखा, और सभी लक्ष्य रख लें, हर मुरली से एक बात तो सीखनी ही है, कोई भी एक बात। कि नहीं मुरली बहुत अच्छी लगी, बाबा बहुत अच्छा, वाह वाह सारा दिन बड़ा अच्छा बीता। लेकिन रस तब आता है जीवन में हम हर मुरली से कुछ ना कुछ ले लें। तो चारों सब्जेक्ट की बात, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की बात, मैं राइट हूँ ये बात, इन पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के लिए तरीका बताया, क्या दिया है बाबा ने रोज मुरली होमवर्क। तो पहले हम मुरली का रस लें। देखिए दोनों बातें हैं, जिनके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं उनका मनन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ब्रेन की सारी शक्ति व्यर्थ संकल्प, वो भी तो मनन है ना, व्यर्थ भी मनन है। मन माना मन जिस पर चलने लगा, कोई आपको दो बुरे शब्द कह गया, मन मनन करने लगा ना, ये मुझे ऐसा समझते हैं, अच्छा दिखाऊंगी इनको कल, चिंतन शुरू हो गया ना। तो सारी ब्रेन की शक्ति अगर व्यर्थ मनन में चली गई तो ज्ञान का मनन होता नहीं। दूसरा, कौन मनन नहीं कर सकते, जो बातों में बहुत रहते हैं। अगर किसी को मनन का सुख लेना है, मनन भी क्या करता है आत्मा को मगन करता है। अगर इसका सुंदर अनुभव करना है तो बातों से परे और एकांत भी रोज लेना पड़ेगा। बिना एकांत के मन सुंदर मनन नहीं कर सकता। तो मुरली हमें रोज बहुत अच्छा होमवर्क देती है। हम सोचें अगर हमें मुरली न मिले रोज, मान लो एक साल तक मुरली न मिले, कोई सुने नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। और कुछ बोलो, सारा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा ना, ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, व्यर्थ की ओर बढ़ जाएंगे। संन्यास में क्या हुआ, लोगों ने संन्यास कर लिया, आश्रम बना लिए, वेद शास्त्र याद कर लिए, गीता याद कर ली, बस वो याद है, रोज पालना नहीं होती ना, तो गिरावट प्रारंभ हुई। क्योंकि मन को रोज अच्छे विचारों का भोजन चाहिए ही, और वो हमें मुरली से मिलता है। तो मुरली में रस लेना, मुरली का सुख लेना और मुरली का बल प्राप्त करना, मनन भी यही है। मनन हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है, मनन से बुद्धि का विकास भी होता है। बच्चों को देखो, जो बच्चे अपनी पढ़ाई का मनन करते हैं वो तेज बुद्धि वाले हो जाते हैं। मनन हमारी बुद्धि का विकास भी करता है, मनन से हमारे विचार भी महान होते हैं, और मनन हमें शक्ति भी देता है, मनन हमें मग्न भी करता है। चारों चीजें, चारों का अनुभव करना, करता है या नहीं। योग में मग्न वही हो सकेंगे जो थोड़ा थोड़ा भी मनन करते करते योगयुक्त होंगे, बाबा से बात करते करते मग्न होंगे। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट हम योग करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें मग्न होने का, परमात्म प्यार का अनुभव नहीं होता है। मनन के बाद रूढ़िहान में आनंद आएगा और बाबा के प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति होगी। जो भी व्यर्थ से बचना चाहते हो वो एक होमवर्क करेंगे। कौन कौन चाहते हैं, सभी जाते हैं सच, पर जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, कल भी बाबा के आगे हाथ नहीं उठाया था कुछ लोगों ने, तो बाबा का ध्यान गया, बाबा ने कहा नहीं करना है। आप अपने पास ज्ञान की 10 पावरफुल पॉइंट्स लिखें, ये खुद लिखनी है, मैं भी लिखा सकता हूँ लेकिन नहीं, उससे फायदा नहीं होगा, खुद लिखनी है। और आप अपने अपने लिए कुछ होमवर्क करें, क्या भले ही हुए होमवर्क हफ्ते तक चलाएं, कि मुझे व्यर्थ संकल्प कहाँ 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 उठते हैं, और जहाँ जहाँ उठते हैं वहाँ ये ज्ञान की पॉइंट मुझे मदद करेगी। पहले होगा ज्ञान की पॉइंट से व्यर्थ का फोर्स धीमा, फिर धीरे धीरे वो स्थिति आएगी जो कल बाबा ने कही सेकंड में, पुलिस तो न क्वेश्चन न आश्चर्य, वो स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। वो स्थिति आना माना आत्मा मोस्ट पावरफुल हो गई है, मन को सेकंड में कंट्रोल कर लिया। लेकिन उससे पहले व्यर्थ की स्पीड धीमी, धीरे धीरे जो संकल्प हम रखेंगे उससे मन शांत होने लगेगा। कहीं हमें निगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदल के उसको ठीक करना है तो हरेक अपने से काम करे। फीलिंग ज्यादा आती है तो क्या संकल्प चलते हैं। बहुत अच्छा वर्क अगर कोई करना चाहे, आपको फीलिंग आ रही है, आप लिखने लगो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब आनंद आ जाएगा आपको, वो फीलिंग आनंद में बदल जाएगी। तो ऐसे कम से कम 25 तरह से मनुष्य को व्यर्थ संकल्प चलते होंगे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। एक एक की दवाई हम ज्ञान के संकल्पों से करें, वो हमें मुरलियों से बहुत मिलते हैं। कहीं हमें मदद करेगा, धामा कल्याणकारी है ये संकल्प। कहीं हमें मदद करेगा, बाबा बैठा है हमारे साथ है, चिंता नहीं। कहीं हमें मदद करेगी, अपनी समस्याएं बाबा को समर्पित कर देना। कहीं हमें मदद करेंगे हमारे स्वमान, जैसे मान लो किसी का अपमान होता है और उसने एक संकल्प रख लिया अपने मन में कि यदि महान बनना है तो अपमान को सहना ही पड़ेगा, तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी ना। अन्यथा ये संकल्प चलेगा, मैं इतना अच्छा पुरुषार्थी फिर भी लोग अपमान करते हैं, बाबा इन्हें ठीक क्यों नहीं करता, फिर सारा गुस्सा उतरेगा बाबा पर, बाबा ये क्यों नहीं करता, बाबा के डायरेक्टर भी बहुत है ना ब्राह्मणों में, बाबा को ये करना चाहिए, बाबा ये क्यों नहीं करता है। आज मुझे किसी ने सुनाया कि देखो भगवान की गति ऐसी है, छोटा सा उदाहरण, कि शिशुपाल श्री कृष्ण को गाली दे रहा है, लोगों को गुस्सा आ रहा है, भीषण तमतम आ रहा है, इसे अभी नष्ट कर डालूं, श्री कृष्ण सबको बैठा रहा, भीम को लग रहा उठा के फेंक दूं इसे, श्री कृष्ण शांत कर रहा, लोग उससे पूछते क्यों, कहा भी थोड़े पुण्य बाकी हैं, और जैसे पूरे हो गए खत्म। तो भगवान के कार्य करने की विधि वो थोड़ा ही है जो हम चाहते हैं, कुछ और है ना। आज एक बहुत अच्छा SMS किसी ने मुझे भेजा, बाबा से ऐसे ही शिकायतों की बात थी, तो उसने कहा भगवान को शुक्रिया करो कि वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का फल तुरंत नहीं देता, अगर तुरंत दे दे तो देखो तुम्हारा हाल क्या हो जाए। इससे पहली लाइन मुझे भूल रही है क्या थी, वो भी अच्छी थी। तो हम सभी व्यर्थ से मुक्त होने के लिए अपने पास 10 पावरफुल शस्त्र रख लें, जो हमें हल्का करें, जो व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करें। इसके अलावा कुछ अभ्यास भी बाबा ने सिखाए हैं जिससे व्यर्थ बहुत जल्दी समाप्त होता है। एक है व्यर्थ आए और उसको समाप्त करें, और दूसरा है व्यर्थ आए नहीं, हमारी मनोस्थिति ऐसी हो कि व्यर्थ आए नहीं, कम से कम आए। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका जो बाबा ने सिखाया है, स्वदर्शन चक्र घुमाना, और सरल शब्दों में 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। अपनी योग साधनाओं में सभी 5 स्वरूपों के अभ्यास को विशेष स्थान दें। मालूम है ना 5 कौन से? पहला निराकार आत्मा, भिन्न भिन्न अभ्यास हो सकते हैं, मैं शरीर से अलग हूँ, उसका थोड़ा सा चिंतन करते करते 1 मिनट लगा दें उसमें। मैं आत्मा हूँ और बुद्धि स्लिप हो गई, ये क्यों होती है, उससे चिंतन शुरू करें, जरा संकल्प करें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सातों गुण रट न जाए फटाफट, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जो कि वो आदत पड़ गई ना, सारे याद कर लिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, सोचते सोचते पता नहीं और कहाँ, फिर सोचेंगे शक्ति स्वरूप भी हूँ, फिर कहीं चले गए। एक संकल्प किया, फील करो आत्मा से शांति की किरणें फैल रही, फिर दूसरा संकल्प करो, प्रेम स्वरूप मुझे सबको प्रेम देना है, शक्ति स्वरूप में माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। फटाफट फटाफट नहीं, पांच पांच सेकंड तो कम से कम, पांच सात दस सेकंड एक एक संकल्प पर आ जाओ तो धीरे धीरे मन को ठहरने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा स्वरूप देव स्वरूप आदि, कितने जन्म रहे आदि में, केवल आदि नहीं, केवल आठ नहीं, बीस तो रहे ही कम से कम, इक्कीस भी हो गए होंगे किसी के थोड़े। क्या थे हम इक्कीस जन्म, कौन कौन माताएं थी देवी, हाथ उठाएंगे जरा, हाथ उठाओ मैं देखूं, सारे नहीं, किसी को संशय हो रहा थे या नहीं थे, इसे सिद्ध है। मैंने हाथ इसलिए उठवाया, हम 2500 साल तक देवता रहे, अभी हमें उसकी कल्पना नहीं है, हम कैसे थे, कैसे थे जरा सोचना है, सोचना है हम ऐसे थे 2500 साल देवता रहे, सोच के देखो जरा, अभी अभी सोचो 2500 साल। हम कहते हैं ना मेरा ये संस्कार तो 20 साल का बना हुआ है, ये छूटता नहीं, और 2500 साल के संस्कार छूट गए, नहीं छूटते, वो सब हमारे अंदर हैं, संपूर्ण देवत्व हमारे पास है, उसकी संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण दिव्यता, सारे गुण शक्तियां वो हमारे पास हैं, जितना जितना हम उसको याद करेंगे, स्मृति अवेयरनेस जागृति, तो सारे गुण दिव्यता जीवन में आएगी। तीसरा, इष्ट देव देवियां पूज्य, सोचो मंदिर में किसी भी चित्र को देखो, ये मैं हूं, सोचते ही उसके गुण संस्कार लक्षण जीवन में आएंगे, और बड़ा स्वरूप है ये मैं हूँ। ब्राह्मण स्वमान याद करो, अपने भाग्य को याद करो, कौन मिला और फिर फरिश्ता, तो पांचों को याद करने से पांचों के लक्षण संस्कार शक्तियां जीवन में आएंगी, तो व्यर्थ छूटता जाएगा, स्वतः ही व्यर्थ होगा ही नहीं जीवन में, क्योंकि हमें अपनी स्थिति ऐसी लानी है, व्यर्थ हो ही नहीं, तो भावनाएं रह जाएंगी, प्रकाश देना रह जाएगा, बाबा ने फिर से याद दिलाया, तो इस पे सभी होमवर्क करेंगे, हमें व्यर्थ से अपने को मुक्त करना है, व्यर्थ में चिंताएं, माताओं को ज्यादा चिंताएं आजकल, किसकी, अपनी नहीं बच्चों की, अपने भाग्य बनाने की चिंता कम, बच्चों को सुधारने की चिंता ज्यादा। सत्य ये है कि अगर हम अपने को सुधार लें तो बच्चे स्वतः ही सुधर जाएंगे। मैं आजकल के युवकों से बहुत अच्छी एक प्रेरणा लेता हूँ, आज भी दो बहनें आई मिलने, आईटी में इंजीनियर हैं वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियर। मैंने पूछा, बहुत थकी हुई लग रही थी, थक गई हूँ बहुत, क्या सवेरे 8:30 बजे घर से जाती हूँ, आती हूँ ऑफिस से रात को 11 बजे, 15 से 16 घंटे नौकरी, उसमें भी बिजी। मैंने पूछा कितने पैसे मिलते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं उसको, किसी को 1,00,000 भी मिलते हैं। मैं सोचा, मैंने उसको भी कहा कि तुम 50,000 के लिए 16 घंटे रोज दे रही हो, हमें ऐसी लगन लग जाए विश्व महाराजन बनने के लिए 16 घंटे दे दें, कमाल हो जाए ना, राजा ही हमारे पीछे पीछे भागने लगे कि ले लो मुझे, हो गया नहीं। तो देखो, थोड़े से धन कमाने के लिए युवकों को मैं देखता हूँ, जिनको अच्छा करना है ना, पहले तो पढ़ाई में मेहनत, कोचिंग कर रहे दिल्ली में चंडीगढ़ में, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जाग रहे हैं साढ़े सात रात दो दो बजे तक पढ़ रहे हैं, और यहाँ योगी जिनसे भगवान मिलने आता है कहते नींद आ रही है, जगह नहीं जाता बाबा, मुश्किल हो रही है। तो प्रेरणा मिलती है ना हमें थोड़ी सी कमाई के लिए, जिसमें वो साथ नहीं देगी हमें। मैंने उन दोनों को आज एक बात कही कि मुझे एक चीज का पता है, आपको पता होना चाहिए, कुछ ही समय में इस संसार से दो चीजें लोप हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, और तब संसार का क्या हाल होगा। करोड़ों लोग जिनको नौकरियां मिली, करोड़ों अरबों भी कह सकते हैं, सब बेकार हो जाएंगे, क्या होगा। तो काम क्या आएगा, क्या आएगा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति। बाबा भी उनको ही काम आएगा जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा, सब देखते रह जाएंगे। संसार में ऐसी ऐसी परिस्थिति आएंगी कि देखते ही रह जाएंगे कि ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी अभी कुमार फोन कर रहा था, हंसी की बात है, कुमार बहुत बैठे हैं, कहा भाई हम तो खाना बनाते बनाते थक गए, लोग कहते हैं खाना ही बनाते रहोगे जिंदगी भर, बूढ़े हो जाओगे फिर कौन खाना बनाएगा, शादी कर लो, भगवान भगवान कोई काम नहीं आता। ये कुमार कह रहा। मैंने कहा भगवान काम नहीं आता तो पत्नी काम आएगी। मैंने कहा मैं बहुत कुमारों को जानता हूँ जिन्होंने शादी की है और अब दुखी है पत्नी से, उसका भी खाना बना के देना पड़ता है। बहुत कुमारों की कथा है ये, सच्ची कथा। उनकी बीमारियों में अपनी नौ छुट्टी लगानी पड़ती हैं, चिंताएं डबल हो गई, पहले अपनी थी अब डबल, फिर बच्चों की भी चार गुनी, केवल खाना बनाने से तंग हो रहे हैं। कि नहीं लोग कहते हैं बुढ़ापे में कैसे खाना बनाओगे। मैंने कहा पहले बूढ़े हो गए तो देखो। मैंने उसे कहा हमारे पास ऐसे ऐसे भाई हैं अभी भी, मुझे भट्टियों में मिलते हैं, 80 साल आयु, मैं पूछता हूँ कौन कौन खाना हाथ से बनाते हैं, 80 साल का बूढ़ा हाथ उठा रहा, खाना हाथ से बनाते हैं। बहू पूछती है देखेंगे कब तक खाना हाथ से बनाओगे, कि जब तक बनेगा बनाएंगे, जब नहीं बनेगा तुम्हें कहेंगे तुम बनाना, तुम भी ज्ञान में आ जाना, तब तक आ ही जाएंगे ना तब तक। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ शरीर में भी शक्ति है, जहाँ स्थिति श्रेष्ठ है वहाँ परिस्थितियाँ बदल ही जाती हैं। तो हमें बाबा की सेकंड बात पे ध्यान देना है, मैं राइट हूँ, ये विचार तो बड़ा कॉमन है सबके अंदर, हर व्यक्ति का विवेक उसे यही कह रहा है मैं राइट हूँ, पर बुद्धिमान वही है और वही मनुष्य महान बनता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, जो अपनी कमजोरियों को जान ले, अपनी महानताओं को पहचान ले। जो मनुष्य अपनी कमजोरी और महानताओं को नहीं जानता वो महान नहीं बनता, वो संघर्षों में रहेगा। दोनों चीजों को जानना जरूरी है, केवल कमजोरी नहीं महानताएं भी। तो दोनों चीजों पे ध्यान देंगे और बाबा की इस बात को, जिसको बाबा ने अंडरलाइन करके कहा, दो तरह की माया विशेष दिखाई देती है, हम इससे मुक्त हो जाएं। व्यर्थ संकल्प से तो हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं, लेकिन इस संकल्प से तो हम फट से मुक्त हो सकते हैं ना। हर जगह मैं ही राइट नहीं हूँ, दूसरा भी राइट हो सकता है। और जो संकल्प हमें परेशान कर रहा हो, जो संकल्प हमारे संगठन को तोड़ रहा हो, जो संकल्प दूसरों को कष्ट दे रहा हो, जो संकल्प हमें योगयुक्त नहीं होने दे रहा हो, वो राइट तो नहीं हो सकता ना। वो बात भी राइट नहीं हो सकती जो हमारे मार्ग को रोक रही हो, जो यज्ञ में बाधक बन रही हो, वो राइट तो नहीं हो सकती। तो हमेशा इस संकल्प को थोड़ा ढीला करें, हम दूसरे के विचारों को भी सम्मान देंगे, दूसरा भी राइट हो सकता है। और यदि हम बहुत अच्छी स्थितियों में रहेंगे, जो कल बाबा ने कही मिट्टी में नहीं होंगे, तो हमें दूसरे की राइट बात तुरंत समझ में आ जाएगी, अपनी गलत बात का तुरंत आभास हो जाएगा। देखिए मैं राइट हूँ इस विचार के पीछे क्या छुपा है बुद्धि में, अहम, एक ही बात है ना। हर व्यक्ति जो अपने को राइट समझ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि में अहम और मैंपन छुपा हुआ है, और अगर हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो ये अभिमान नष्ट होता है और हमें सहज ही अपनी गलती का आभास हो जाता है। यहाँ मैं राइट नहीं हूँ, मुझे अपने को चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य दूसरे को चेंज करने की इंतजार करता है। दूसरे चेंज होंगे नहीं और हम सुखी नहीं होंगे तो मजा क्या आएगा जीवन में। तो सभी बाबा की इस मुरली पे ध्यान दें। अब चारों सब्जेक्ट में हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, सभी को ये मोटी मोटी और गुह्य बातें भी जाननी चाहिए। अश्रतन माना चारों सब्जेक्ट में फुल, विजयी रतन माना चारों सब्जेक्ट में 75% के आसपास, बाकी किसी में ज्यादा किसी में कम उस अनुसार नंबर बनते हैं। बाबा कल रॉयल फैमिली की बात भी कर रहे थे, रॉयल प्रजा नहीं रॉयल फैमिली, क्योंकि जो राजा ही में जन्म लेते हैं वो राजा हो या ना हो वो तो राजा ही जैसे रहते हैं ना, उनके ठाट बाट ही नहीं, वो आदेश भी अपनी प्रजा को राजा की तरह ही देते हैं, उनका सम्मान भी प्रजा में राजा की तरह ही होता है। तो हम चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, चारों सब्जेक्ट। वैसे गुह्य रहस्य है, बाबा ने साकार मुरलियों में बता दिया है, जिसने अपने को बाबा पर समर्पित किया उस पर बाबा कम से कम एक बार राजाई अवश्य समर्पित करता है, चाहे एक छोटे गांव की राजाई क्यों न हो। ये बाबा के माँ बाप के साकार के, जिन्होंने अपने को समर्पित किया एक बार की राजाई तो उनकी फिक्स हो गई, चाहे वो छोटी हो चाहे त्रेता के अंत की हो। त्रेता के अंत में तो बहुत राजाई हो जाएंगी ना, भारत का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक, उसमें एक एक जो टाउन होगा जिसे आजकल टाउन कहते हैं, ऐसा समझ लो जहाँ 10,000 देवता रहते हैं वहां का एक राजा होगा, तो बहुत सारे राजा होंगे। लेकिन समर्पणता का अर्थ बड़ा सूक्ष्म भी है, एक है स्थूल रूप में अपने को समर्पित कर देना और दूसरा बहुत लंबी परिभाषा है इसकी, बुद्धि को भी मन को भी अपने हर कर्म को बाबा को सौंप देना। ऐसा समझ लें हमारा जीवन ही तुम्हारे लिए, जीवन ही तुम्हारा, धन की बात तो उसमें बहुत छोटी हो गई, हमारा जीवन ही तुम्हारा, हमारा हर कर्म तुम्हारे लिए। ये बड़ी सूक्ष्म प्रैक्टिस की बात है, बहुत अच्छी साधना की बात है, जिसमें हम अपने घर को बाबा का यज्ञ ही समझेंगे और अपने भंडारे को भोलेनाथ का भंडारा, बाबा की मुरलियां हैं ये, जो ऐसा समझकर चलते हैं वो मानो भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, और उनका हर कर्म यज्ञ प्रति हो गया ना। देखिए सुख संगति, गीता में भी ये महावाक्य है, हर कर्म यज्ञ प्रति करो। लोगों ने इसका अर्थ बिल्कुल नहीं समझा क्योंकि वहां यज्ञ होता ही नहीं, तो स्थूल यज्ञ करते हैं वो सदा तो यज्ञ होगा नहीं, उसका अर्थ अभी समझ में आता है कि भगवान ने जो यज्ञ रचा है तुम भी अपने घर को यज्ञ बना लो, बल्कि अपने जीवन को भी यज्ञ बना दो, तो तुम्हारा हर कर्म यज्ञ प्रति हो जाएगा, हर कर्म डिवाइन हो गया, दिव्य हो गया, तो कर्मात्मा को बांधेंगे नहीं, कर्मातीत अवस्था की ओर ले चलेंगे। धारणाओं के सब्जेक्ट में हम 5-7 बाबा की मुख्य धारणाएं नोट कर लें, जिनके आधार से हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। पहली धारणा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पवित्रता। दूसरी धारणा संतुष्टता, दूसरी इम्पोर्टेंट धारणा, बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर बहुत अव्यक्त मूल्यां चली हैं आज तक, जिसके लिए बाबा ने सबसे ये बात कही, जब आत्मा संपूर्ण संतुष्ट हो जाती है वही उसकी संपूर्णता है, ये सबसे ये बात। तीसरी धारणा हर्षित मुक्तता, प्रसन्नता, खुशी। चौथी निरहंकारिता। पांचवी सरलता। पांच धारणाओं के ध्यान में इनके पीछे सब आ जाती हैं। पांचों को हम अपना लेते हैं। एक धारणा और लिख लें, छठी भी जुड़ती तो इनसे ही है, पर जो बाबा को बहुत प्रिय है, सत्यता और ईमानदारी, मॉरल वैल्यूज में जिसका सबसे ज्यादा मान है, ईमानदारी और सत्यता। कलयुग में तो नहीं है, पर बाबा के पास इनका प्रभाव है। ज्ञान में हम मुरली पे ध्यान दें, मुरली मनन पे ध्यान दें, ज्ञान सुनाने पे भी ध्यान दें, ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहे। सेवा, सेवा का सब्जेक्ट भी बहुत हुई है, योग तो योग युक्त रहना, सेवा। सेवा में फुल मार्क्स किसको मिलेंगे? जो हाँ सब बातें आप बोल रहे हैं, मनसा वाचा सेवा कर्म ना करें, निस्वार्थ भाव से करें, सच्चे दिल से करें, खुशी से करें, करण करावन हार करा रहा है, निमित्त भाव से करें, योग युक्त होकर करें। ठीक है ये सब उत्तर? तो बिल्कुल सच्चे दिल से सेवा, जो भी सेवा जिसको मिली है। और आप सब जो घरों में रहते हैं, मैंने आपको ये बात सुनाई, अपने घर को यदि यज्ञ मानिए बाबा का, तो आपके घर की कार्य यज्ञ सेवा बन जाएगी। सुख संप्रेषित करें, निस्वार्थ भाव से सुख देने की कामना से सेवा करेंगे, दिखावे के भाव से नहीं, वर्णन करते हुए नहीं, तेरे मेरे के भाव से नहीं, तेरा मेरा है तो सेवा की दिव्यता नष्ट होती जाती है। जहाँ भी तेरा मेरा होगा वहाँ सेवा की दिव्यता नष्ट हो जाती है। ऐसे हम चारों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी है फुल स्टॉप लगाने की बात सेकंड में, वो सबका अपना अपना अभ्यास है। बाबा ने कहा जब हलचल हो ऐसी, भाव स्वभाव की बात आ जाए, तब जरा मन को सख्त शांत करने का अभ्यास करो। होता तो नहीं है तब किसी लड़ाई हो जाए और हम सोचें अब योग कर लें जरा, तो उसने क्या कहा वही याद रहेगा, बाबा ने क्या कहा वो बिल्कुल याद नहीं आएगा, बातें क्या हुई यही याद रहेगी। तो बाबा की मुरली पर हम बहुत अच्छी तरह से मनन करेंगे। देखो बाबा को अच्छी तरह से आप देखते भी होंगे, बड़ी आजकल तो स्क्रीन लगती है ना, वहाँ पर्दा देखते हैं अच्छी तरह से, बाबा के हाव भाव देखा करें कि बाबा अपने सभी बच्चों से कैसे प्यार करता है, उसके मन में हम सभी के लिए कितनी सुंदर भावनाएं हैं या नहीं, डांटता नहीं है कि तुमने ये नहीं किया, इतना काम दिया था कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल वो दृष्टि में भी नहीं दिखाई देता बाबा की। झूठ मूठ भी लोग हाथ उठा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं सकास क्या होती है उन्होंने भी हाथ उठाया, हम भी सकास देते हैं, लेकिन बाबा सबको देख के मुस्कुराते हैं। चलो एक मिनट तो देते होंगे, तो भावनाएं तो रखते होंगे, और ज्यादा करो। यही बात हम बाबा से सीखते हैं कि बाबा कैसे एनकरेज करता है, उमंग उत्साह दिलाता है सबको, जो नहीं हुआ उस पे विचार ही नहीं है उसका, जो हुआ उस पे ही ध्यान है। हाँ किया बच्चों ने कुछ तो किया, जो किया उसके लिए शाबाश, वाह बच्चे वाह हैं। तो देखो ऐसी भावना कितनी, ये भगवान के सिवाय और किसी में नहीं हो सकती ना, पता चलता है ना, भगवान के सिवाय किसी में नहीं। तो हम भी बाबा से ये सीखते हैं और ऐसे ही सब हर मुरली से सीखते चलेंगे। ओके।